आज हम पढ़ेंगे एक और सहाबी के हालात और उनका नाम है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। आप कहेंगे ये किन के नाम हम पढ़ रहे हैं या किन की कहानी है जिनको हम जानते भी नहीं। हकीकत भी यही है, हम सहाबा में से भी अमूमन बस अबू बकर, उमर, उस्मान और चंद सहाबा को जानते हैं। तो ये गैर मारूफ सहाबी हैं, इनकी कोई ना कोई एक खूबी या कोई एक मौके की बात इनकी वजह शोहरत बन गई। तो अबू उबैदा बिन जराह के बारे में रदी अल्लाह उनको कहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल है इनके बारे में। हर उम्मत का एक अमीन होता है और इस उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। अल्लाह के नबी की गवाही इनके हक में। ये किस मौके पे कहा गया था, आइए इनके हालात ज़िंदगी में से पढ़ते हैं। खुश शक्ल, हंसमुख, अकेहरे जिस्म यानी दुबले पतले, दराज कद और ऐसे तीखे खदो हाल वाले के देखने वाले की आंखों को सुरूर हासिल हो, आपसे मुलाकात करने वाले की तबीयत मानूस हो और इसे दिली सुकून मुयस्सर आए। सवाल पैदा होता है कि इसमें क्या चीज़ इंसान के इख्तियार में और क्या नहीं है। खुश शक्ल होना, हंसमुख, अकेरा जिस्म, दराज कद, तीखे हद्दो हाल। जी बताइएगा इसमें क्या आपके इख्तियार में है और क्या नहीं है। हंसमुख होना और खाना पीना कम रखना। देखिए कद इख्तियार में नहीं है, जितना मर्जी लटक लें। नैन नक्श इख्तियार में नहीं है, जितनी मर्जी फोटो सर्जरीज करा लें। हर वो शक्ल खुश शक्ल है जो अल्लाह ने बनाई है, और जब उस पे स्माइल आ जाता है ना, बंदा हंसमुख होता है, तो हर शक्ल प्यारी लगती है। आपके मेरे अमल की इसमें बात कह के चेहरे पे स्माइल रखा करें। दीन वालों के चेहरे पे सख्ती, तलखी, खिंचाव लोगों की नज़रों में दीन को बोरिंग बना देता है, बोझल, और वो सोचते हैं कि दीन होता ही ऐसे है। हम एक जगह गए और उनका बच्चा बहुत ही प्यारा स्मार्ट बच्चा था, कुछ लोगों को पता नहीं, पता तो चल जाएगा कि सर की मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो ये अपने एक्सेंट की वजह से या जो भी, तो इंग्लिश बोल रहे थे। तो उस बच्चे का आप सवाल सुनिएगा, आप कहते हैं अंकल इफ़ यू आर रिलीजियस देन वाई यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। इतना खूबसूरत प्यारा मीठा बच्चा, यानी उस गरीब को ये बता दिया गया है कि इंग्लिश जहन्नमियों की ज़ुबान है और नेक लोग बस अरबी बोलेंगे। सिर्फ आपको बताने लगी हूँ, अल्लाह ताला ने किसी इंसान के लिए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई कि जो उसके इख्तियार में ना हो और अल्लाह उससे पूछे। तो हमेशा अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करें, लोगों को आप अपने जैसे लगें, जॉली भी लगें, स्माइली भी लगें। हमारे इस साल के कैलेंडर का फर्स्ट मंथ पूरा स्माइल पे है, जनवरी का। स्माइल रखिए, एक महीने की प्रैक्टिस के बाद कुछ तो आ जाएगी ना स्माइल चेहरों पे। तो लोगों को शक होने लगे कि इनको मिला क्या है, ये दीनदार का ख्याल होना चाहिए। हम कहते हैं लोगों को पता लग जाए हम दुखी इंसान हैं और बड़े ही परेशान लोग हैं हम। तो बहरहाल, आपसे मुलाकात करने वाले की तबीयत मानूस हो और इसे दिली सुकून मुयस्सर आए, ये एक गोल बनाइए। क्यों कुछ लोगों को मिलकर उठने को दिल ही नहीं करता, ऐसे लगता है बरसों से जानते हैं। ये मानूसियत होती है, उन्स, मोहब्बत, क्लोजनेस। और दिल का सुकून किसको मिलता है, जिससे आप दिल की बात कर सकें, जो आपको वाकई खुशी दे सके। और एक इंसान को कम से कम ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि दूसरा उससे बात कर सके, दिल का दर्द बयान कर सके और उसके कंधे पे सर रख कर रो तो सके। और ये आपका अखलाक और आपका जो दूसरों के साथ ताल्लुक़ होता है ना, गुर्बत का होना चाहिए। अल्लाह के नबी के बारे में जो एक बात मारूफ थी वो ये थी कि जो भी आपसे मिलता उसको ये लगता कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा उससे मोहब्बत करते हैं। और सारे बैठ के लड़ते होंगे, नहीं वो उनको मुझसे ज़्यादा प्यार है, उनको मुझसे ज़्यादा प्यार है और दिस एंड दैट। तो इससे सीखने की बातें हैं कि कम से कम अपना अखलाक और अपना गेटअप और अपना यह अंदाज़ को ऐसा तो रखा करें कि जिससे दूसरे आपसे खुशी महसूस करें, अजनबियत नहीं अपनाइत महसूस करें। इसके साथ साथ आप खुशहाल, मुनकसिरुल मिजाज और बहुत ही शर्मीले थे, लेकिन जब कभी कोई उफ्ताद आन पड़ती, उफ्ताद क्या है, आफत, तकलीफ, या कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, तो फिर आप शेर की मानिंद चाको चौबंद हो जाते हैं। क्या कॉम्बिनेशन होता है मोमिन, यही तो कहते हैं, कुरान में भी है ना, फबीमा रहमत मिनल्लाहि लिन्त लहुम। और मोमिन का मिजाज कैसा होता है, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, हो रज़ में हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन। आज हो पता क्या गया, ऑपोजिट, ऊपर से हम सख्त खुरदरे चुप रोब कम हो जाए, और अंदर से बिल्कुल बुजदिल। ये सहाबा की शख्सियात को देखा करें, किस तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला यादगारों को समेट देता है। हम बाकी इन लोगों को नहीं जानते जिनके तذکرے कुरान में भी और हदीस में भी हैं। इसके साथ साथ आप खुशहाल, मुनकसिरुल मिजाज और बहुत ही शर्मीले थे, तो क्या मोमिन खुशहाल हो सकता है भाई, गरीब ही नहीं होना चाहिए। देखिए खुशहाल का ऑपोजिट क्या है, बदहाल, क्या बताएं, बड़ा ही बुरा हाल है। तो क्या कोई मोमिन आपको खुश नसीब, खुश बख्त, माल वाला, पैसों वाला, अच्छी गाड़ी वाला, अच्छे कपड़ों वाला हो सकता है? शक नहीं करना चाहिए कि ये कहाँ से आए इनके पास, ये गाड़ी कहाँ से आई इमाम साहब के पास, करना चाहिए ना। और इतने बड़े इमाम होकर इतनी नई गाड़ी में बैठे हैं, करना चाहिए ऐसे। तो हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखें। और मिजाज में क्या हो, अब अच्छे कपड़े पहन लिए तो अकड़, अच्छे जूते पहन लिए हैं तो चाल में एक तनाव आए, अपने बंदे को खुद ना पता लगे कि मैं क्या लग रहा हूँ। ये होती है मुनकसरुल मिजाजी, सेल्फ कॉन्शियस ना हो, स्टैचू ना लगे और शर्मीले थे। लेकिन जब कोई मुश्किल आई तो शेर की तरह, क्या पता चला कि अंदर से बहादुर थे लेकिन आजजी अल्लाह के लिए थी। इसके अलावा आप जलालो जमाल, तबीयत की तेज़ी और असरो नफूस में चमकदार तेज़ तलवार की माने थे। क्या खूबियाँ थी इन लोगों में, अल्लाह हमारा भी किरदार पुख्ता कर दे। आप हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अमीन, हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्राहुल फ़ाहरी अल-करशी, जिनकी कुनियत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हो है। अब आप ज़रा इनके नाम पे गौर करें, उम्मत के अमीन क्यों हैं, ये वाक्य आगे हम पढ़ेंगे। अभी नाम देखिएगा, आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्राह, आमिर है असल में नाम, बाप का नाम अब्दुल्ला, दादे का नाम जर्राह, अल-फ़ख्री कबीला और करशी ज़ात से, यानी जिसको आप बिरादरी कह सकते हैं। तो फिर अबू बैदा किधर चला गया, ये कुन्नियत थी। यानी आप देखिए, अगर हमारे भी इतने लंबे चौड़े नाम होते, हम तो कहते छोटा सा नाम हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने तासुरात बयान करते हुए फरमाते हैं कि कुरैश में तीन शख्सियात ऐसी हैं जिनके चेहरे तमाम लोगों से बढ़कर ज़्यादा हसीन, जिनका अखलाक सबसे उम्दा और जिनमें हया सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर वो आपसे गुफ्तगू करें तो कतन झूठ ना बोलें, अगर आप इनसे कोई बात करें आपको झुठलाएंगे नहीं। मेरी नज़र में वो तीन अजीम शख्सियात ये हैं, आप भी सोचें आपके जहन में क्या आया। आप सुन लें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हो, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हो, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाहु अन्हो। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हो का शुमार इन सहाबे कराम में होता है जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत की। आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर के इस्लाम कबूल करने के बाद दूसरे रोज़ ही मुसलमान हो गए। किस किस को ये बात पहले पता थी, किसी को भी नहीं पता थी। तो ये अव्वल दौर के मुसलमान हैं, कोई फ़ौरन ही मुसलमान हो गया, इससे क्या पता चलता है, शाबाश, कल्बे सलीम था। वो जैसे माचिस को दिया सिलाई दिखाने की देर होती है, वो भड़क उठती है। जो लोग स्टबन होते हैं ना अंदर से सख्त, वो इतनी जल्दी नहीं कोई भी दावत कबूल करते। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाहु अन्हो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत उस्मान बिन मज़ून और हज़रत अरकम बिन अबील अरकम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन के हमरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और आपके रूबरू, यानी सामने, कलमाए हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। तो ये सीनियर्स थे, अव्वल दौर के लोग थे। हकीकत में ये वो अजीम शख्सियात है वो जो पहली बुनियादें हैं जिन पर इस्लाम का महल तामीर किया गया। बुनियादों में कैसे लोगों को शामिल होना, यानी उनके अंदर किरदार की पुख्तगी हो। देखिए इल्म पुख्ता हो जाएगा वक्त के साथ साथ, बल्कि ज़्यादा मौके मिलते हैं। किरदार पुख्ता करेंगे तो अल्लाह आपको काम देगा, ये भी याद रखें। हम अमूमन किस पे परेशान होते हैं? तर्जमानी पक्का, और ये नहीं और वो नहीं, हम कैसे आगे आए? नहीं, आपको आना है। दुआ किया करें कि अल्लाह दोनों चीज़ों को साथ साथ ही बढ़ाता रहे। जितना इल्म बढ़ेगा ना, ये हो नहीं सकता कि आपका किरदार पुख्ता ना हो, और अल्लाह ताला हमें इल्म की तरफ लगा दे। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मक्का मुअज़्ज़मा में शुरू से आखिर तक मुसलमानों को पेश आने वाले तल्ख हालात में ज़िंदगी बसर की। ऐसी शदीद तकालीफ और रंजोअलम में इनका साथ दिया कि जिन शदायद व तकालीफ का रूए ज़मीन पे बसने वाले किसी भी दीन के पैरोकारों को कभी भी सामना न करना पड़ा हो। आप इस दौरे इब्तला में साबित कदम रहे और हर सूरत में अल्लाह ताला और रसूल मकबूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से यानी समीमे कल्ब से सच्चा माना। लेकिन मैदान बदर में हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु को पेश आने वाली आजमाइश इस कदर नाजुक थी कि इंसानी तख़य्युल में भी ना सके, यानी यू कैंट इमेजिन अबाउट दैट। ग़ज़वे बदर में हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु बेखौफ व ख़तर दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आपके इस जुरतमंदाना इकदाम से दुश्मनों में भगदड़ मच गई। आप मैदान जंग में इस तरह बिफरे हुए चक्कर लगा रहे थे कि जैसे मौत का कोई डर ही ना हो। ये जुमला नोट करें, मौत का कोई डर ही ना हो। आपका ये अंदाज़ देखकर कुरैश के शख्स सवार घबरा गए। जब मोमिन बेखौफ होता है ना तो दुश्मन डरता है, जो ही आप इनके सामने आते तो वो खौफ ज़दा होकर एक तरफ हो जाते। दुआ करें हम ऐसे हों, हमसे क्यों उलझने और झगड़ने की बजाय कह दे पीछे हो जाओ, इसको नहीं कुछ को। जितना आप अपनी चीज़ में पुख्ता होते जाते हैं ना, अल्लाह ताला दूसरों के दिलों में इसी तरह डाल देता है। लेकिन इनमें सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो आपके सामने अकड़ कर खड़ा हो जाता, लेकिन आप इससे पहलू तही इख्तियार कर जाते और इसके साथ मुकाबला करने से इज्तनाब करते, यानी अवॉइड करते। वो शख्स भी आपसे मुकाबला करने के लिए बार बार सामने आता रहा, लेकिन आपने भी इससे पहलू तही इख्तियार करने में कोई कसर बाकी ना रखी। बिलाखिर इस शख्स ने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए, हत्ता कि वो आपके और दुश्मनान इस्लाम के माबैन हाइल हो गया। लेकिन जब आपने देखा कि अब कोई चारा कार बाकी नहीं रहा, तो इसके सर पर तलवार का ऐसा ज़ोरदार वार किया जिससे इसकी खोपड़ी के दो टुकड़े हो गए और वह आपके कदमों में ढेर हो गया। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यह कत्ल होने वाला शख्स कौन था? बिलाशुबा मैदान बदर में हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु को पेश आने वाली यह आजमाइश हिसाब दानों के हिसाब से भी ऊपर थी, मावरा, यानी कोई हिसाब लगा नहीं सकता कि ये कितनी बड़ी आजमाइश है। कितनी नहीं, नून के आगे को 10 दफ़ा छोटी या लगा दें। हाउ बिग वॉज दैट ट्रायल? और वो क्या था कि ये लाश तो हज़रत अबू उबैदा के बाप अब्दुल्ला बिन जराह की थी, और इसको सुनकर इंसान अपनी उंगलियां दांतों में दे देता है। ये है अल हुब्बु फिल्ला वल बुग्ज़ु फिल्ला। हम किन बातों के रोने रोते हैं? नहीं, फुला फुला अपने ये वो, अल्लाह ना करे इस तरह की आजमाइश किसी पे आए, जब आती है तो क्या होता है। दरअसल हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह उन्होंने अपने बाप को कत्ल नहीं किया, बल्कि उन्होंने मैदान बदर में अपने बाप के हैवले, हैवला कहते हैं अक्स को, हैवले की शक्ल में शिर्क को नीस्तो नाबूद कर दिया। आपका ये इकदाम अल्लाह सुबहान तआला को इतना पसंद आया कि आपकी शान में दर्जा ज़ैल आयात नाजिल कर दी। इरशाद बारी ताला है, सूरह मुजादला 22। और आयतें क्या हैं ज़रा से एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिए और आपको इन लोगों के ईमान का अंदाज़ा होगा कि कितना पुख्ता ईमान था इनका। ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा। من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ ہے وہ مقام، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کون ہے؟ وہ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں. خبردار رہو کہ اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا، وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آرزو مند رہتی ہیں. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ظاہر تو یہ لوگ کہیں گے بہت گناہ کا کام، بڑی بری بات، سنگ دل اور اللہ آیتیں اتارا. عام حالات میں اف نہ کہو باپ کو، عام حالات میں ماں کے ساتھ کیسے رو، لیکن حورز میں حق کو باطل تو اولاد ہے مومن. حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا، ہم کر سکتے؟ ہم تو فتوے دے کے آ جاتے. ابراہیم کی جگہ ہم ہوتے تو چھری رکھتے اپنے بچے کی گردن پہ. لاکھوں لوگ ہر سال حج کرتے ہیں، وہاں سے صرف یہ ایک سبق لے کے پلٹے نا واپس اپنے اپنے ملکوں میں کہ اصل میں جو نیکی ہم سے مطلوب ہے وہ کیا ہے، کہ یو وا دون من حاد اللہ والی کیفیت نہیں ہوتی تھی ان کی، کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں. آج ہم ان کے جوتوں میں پاؤں ڈالتے ہیں. اللہ اکبر، ہماری تو ڈکشنری بدل گئی، ہماری تو ترجیحات بدل گئی. اللہ اکبر، ایمان کیسے جرت دیتا ہے اور ترجیحات کو بدل دیتا ہے. جناب حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہوں، وہ ہمارے ان باہمی مالی اختلافات کو نپٹائے. جو قسمت کی برائی سے شومئی قسمت سے شدت اختیار کر چکے ہیں، اور ہم برملا یہ تسلیم کرتے ہیں، یعنی اوپنلی، کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہے. یعنی غیر مسلم مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے معاملات کے تصفیے کے لیے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج ہم مسلمان کدھر جاتے ہیں؟ ان کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی جلدی نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے. بخدا مجھے عمارت و قیادت کا شوق نہ تھا، لیکن میری یہ تمنا تھی کہ وفد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان کا مصداق، یعنی ڈیزرونگ، میں ٹھہروں. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر یوں یوں اپنے آپ کو اونچا کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے. اس دوران میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تاکہ آپ کی نظر مجھ پر پڑے. کوئی کام نہ کرنا ہو نا تو بندہ منہ نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر جب کوئی نام لے تو کہتے ہیں اچھا مجھے کہا تھا آپ نے. اس وقت لوگ جان چھڑاتے ہیں. ہاں، آپ مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر کرم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہ پڑی. انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وفد کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہم سے بازی لے گئے. سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز میں بازی لے گئے اور آج ہم کس چیز کی بازیاں لگاتے ہیں؟ ہے کسی کے لیے یہ معیار آج ہمارے میں سے कि किसी को अल्लाह का रसूल अल्लाह के दीन के लिए चुन ले, उसका नाम आ गया कि आज सारी सफाई आपने करनी है, आज आपने जल्दी आना है, आज आपने देर से जाना है, आज आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या लोग उस पर रहते हैं? हम तो अपने दीन की जिम्मेदारियों को छोड़ छोड़ कर दुनिया की गुलामी और नौकरियां करने लग जाते हैं। आज हम क्यों इतने हांपे में, कभी सोचा आपने? इस वक्त क्यों परेशान है? सुबह से हम कहाँ थे? माने ना माने दुनिया की चीज़ों की वजह से कुर्बानी देनी पड़ रही है। औरत अपने मिजाज के अतबार से कभी नहीं पसंद करती कि बिला वजह घर से निकले, लेकिन मजबूरियों के नाम पे असल में ख्वाहिशें होती हैं। सलाहियत तो पेश किया जा सकता है, घबराना तो नहीं चाहिए और अपना काम छोड़ के दूसरे की खिदमत तो नहीं करने लग जाना चाहिए। और आप देखिए कि अमानत से मुराद सिर्फ पैसे रुपए की नहीं, अमानत जिम्मेदारियाँ। हम जिम्मेदारान हैं, कितने को गैर का लफ्ज़ लगा दें कि इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ना करे कि जिम्मेदारान का नाम गैर जिम्मेदारान बन जाए। दीन के नाम पे अमानतें पूरी करनी है। हज़रत अबू बैदा रज़ी अल्लाह अन्हु दयानत और अमानत के आला मुकाम पर फ़ाइज़ थे, और आप में कायदाना सलाहियत बदरजाए उत्तम पाई जाती थी। मांगी अल्लाह से लीडरशिप। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी खूबियाँ, लीडरशिप ना होने की वजह से आधा भी नहीं फ़ायदा उठा पाते खुद से। यहाँ से मांग के जाइए सब, अल्लाह ताला मुझे लीडर नहीं, लीडर बनने का शौक सबको है, लीडरशिप वाली सलाहियतें नहीं। आगे जाके ऐसे फंसेंगे कि समझ नहीं आएगा कि अब आगे जाएं कि पीछे। बिलीव मी, ऐसे लीडर जिनमें सलाहियतें ना हों वो ऐसे रश में जाके फंसते हैं कि अल्लाह की बना। बहुत से मौके पर आपकी दयानत व अमानत और कायदाना सलाहियतों का नहायत खुश उसलूबी से इजहार भी हुआ। अल्लाह वक्त डाल के दिखाता है कि देखो इस बंदे में कितनी खूबी है। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम रदी अल्लाहु अन्हुम के एक जमात को कुरैश के एक काफ़िले की सरकूबी के लिए रवाना किया, और हज़रत अबू बैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस जमात का अमीर मुकर्रर कर दिया और ज़ादे राह के लिए खजूरों का एक थैला अता किया। सूरत हाल ये थी कि आपके पास इसके अलावा मुजाहिदीन के ज़ादे राह के लिए कोई और चीज़ भी ना थी। ज़रा रुक के सोचिए, ये इन्हीं जगहों की बातें हैं। ज़ाहिर है कि इधर बैठे हुए हैं तो सोचे तो आती है ना। आप अपने ननिहाल में चले जाएं तो आपको वो याद आने लग जाते हैं, ददियाल के किसी घर में जाएं तो वो याद आएंगे, कहीं पहले से रहते थे तो अपने नेबर्स याद आते हैं ना। तो ये हो नहीं सकता कि मक्का आकर इंसान मक्की हालात और वो सहाबा को याद ना करे, हज़रत इब्राहिम को ना करे। अभी आप देखिएगा, जब आप मदीना जाएंगे ना, आपके दिल की कैफियत बदल जाएगी। बस में, गाड़ी में, जिसमें भी जाएंगे, बैठने की देर है, हिजरत के रास्तों से जब गुजरेंगे ना, दिल बदलने लगता है, क्योंकि हम पे असर होता है। तो मैं यही सोच रही थी कि ये वो लोग हैं जिनको एक एक खजूर मिलती थी। पढ़ के देख लें, ज़्यादा राह के लिए खजूरों का बस एक थैला था पूरी टीम के लिए, और इसके अलावा कुछ और था भी नहीं। अल्लाह हमें भी इतना सब्र दे दे। इस सफ़र में सहाबा कराम रदी अल्लाहु अन्हुम ने कमाले सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, और अमीर काफिला हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भी क़ियादत और अमानत का हक अदा कर दिया। आप रोज़ाना हर एक मुजाहिद को एक खजूर देते और वो इसे खाकर पानी पी लेता, और ये खुराक दिन भर के लिए काफ़ी होती। जी कितने लोग हैं बाहर हरम में, गिन नहीं सकते ना। हज और उम्रा कोई आसान काम नहीं है, कह लिए कि सारी बातें इसमें जमा हो जाती हैं, जानी भी माली भी। हम खाए पिए बगैर इबादत कर सकते? आज सुबह जो रास्ते में गाइड थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला था, इसी से मुतल्लिक था, याद है किसी को? उन्होंने कहा कि हमारी तो सहूलतों में ज़रा सी एक वो कमी आने लग जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। सहूलतों में, ये नहीं कि ज़रूरियात में। सहूलत पता क्या होती है? सहल, चले काम तो करने आसानी से कर लें। आज हम इतने बिगड़ गए कि हमारी जिंदगियों में खाना कहवा में भी आके तब्दीली नहीं आती। 19 से 20 हो जाएगा, फौरन कंप्लेन जाएगी, ये नहीं है। और कल फिर मैंने एक बच्चे से पूछा, इस ट्रिप में भी गवाही मिल गई है। मैंने कहा, बेटा व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट हेयर? होटल का नाम ले रहा था, आई लाइक होटल। अब बच्चा है, देखिए उसका कोई कसूर नहीं है, बिलीव भी नहीं कसूर। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे होटल की बात करके कि उस बच्चे को हम बुरा समझे या तनकीद करें। मैं बात करती हूँ कि हम अपनी रूहानियत पे भी जोर दें, और ये देखेंगे आप इतना इसका असर आएगा गैर महसूस तरीके से। अब बच्चे तो ये समझते हैं ना कि ये अच्छा है, लेकिन उनको इतने मुसलमानों का इकट्ठा मस्जिदों में जाना कभी दिखा अपने मुल्क में? नहीं दिखा ना। आप जब बैठे ना तो इस मौजू पे बात करें कि बेटा देखो एक अजान पे दुकानें बंद हो जाती हैं। मैं कहती हूँ अगर मैं आपको यंग बच्चों को अपने साथ लाऊं ना, तो मैं इस सोच से लाऊंगी कि देखो इस्लाम क्या है, गालिब है, लियो सिराहु अलद्दीन कुल्ली। तो आप सब खुद भी और अपने बच्चे बच्चियों को इन दिनों में इस पॉइंट पे बात करें। नमाज तो है, और ये कभी नहीं हो सकता कि उनको नमाज से पीछे कर दें। मुझे डर लग रहा था कि आज उन्होंने सुन लिया है, इतने मील तक यानी हरम की हद है, वहाँ भी नमाज पढ़ लें तो हरम का ही अजर है। तो उन्होंने कहना हम अपने घरों में क्यों ना पढ़ लें। यानी आप समझ रहे हैं कि दिन ब दिन आसानियाँ, जैसे बंदे होते हैं अल्लाह सहूलतें भी ऐसी कर देता है। कैसे पहले लोग पत्थरों से कूद कूद के जाते थे अरफात के मैदान में, आज प्लेन। सुन रहे थे आप लोग? तो हमेशा याद रखिए बच्चों को अच्छी सहूलतें भी दें, लेकिन साथ ये ना हो कि सिर्फ इसी में खो के चले जाएं। और उनको पसीना आने दीजिए, उनका वक्त लगे रस्तों में, वो रश में फंसे, उनको वेट करना पड़े, इनको सब्र करना पड़े। ये जहाँ से निकलेंगे तो आप देखेंगे 10 से 15-20% तो पहली दफ़ा में चेंज आने लगता है। जी आपने कुछ देखा?
आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो मैं देवा को कह रही थी कि हमारी आदतें ना खराब हो
अच्छी बात की है, घर जाके खुद ही पकाना खाना है। अल्लाह अकबर। तो आप इसको आजमाइश समझें, अगर ये ना होती तो और तरह की आजमाइश होती ना। तो अब हम इसको आजमाइश समझें कि ये हमारा टेस्ट है। मैं अपनी भी सुना दूं बात। किसी ने मुझसे चंद माह पहले पूछा आपको क्या फ़र्क लगता है जब आप अपने घर में कभी होती हैं, तो मैंने कहा जहाँ मुझे बर्तन धोने पड़े मैं समझ जाती हूँ अपनी। तो वो पाकिस्तान में जो हेल्पर थी ना, तो कहती भाजी तुसी मैनू नाल लै जाओ। मैं कह मैं तुहानू नहीं लेके जा सकती। और सच है अपने घर में पका के खाना पड़ता है, अल्लाह के घरों में पका पकाया मिलता है। बहुत पहले एक रोटी निकली थी पकी पकाई, तो ये अल्लाह के रस्तों में मिलती है पकी पकाई ताज़ा रोटी। हर जगह अल्लाह ताला देखे हमें क्या खिलाता है। यकीन करें मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह उसका होता है। तो किस किस को रोटी पकानी मुश्किल लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए असल जो मुझे समझ आते हैं ना, अब आप चूंकि दिन थोड़े रह रहे हैं ना तो अंदर से दिल बंद हो रहा है, जो आपने लेके जाना है ना फूड, वो अल्लाह के रास्ते की भाग दौड़ है। इधर सिर्फ भाग दौड़ का फ़र्क है। देखिए 5 नमाजें वहाँ पढ़ते हैं, है कोई छुट्टी? नहीं, पूरी नमाजें हैं यहाँ के, वही हैं ना, कोई एक भी एक्स्ट्रा नमाज है इधर? तहज्जुद उधर भी पढ़नी थी पढ़ सकते थे, इधर भी कोई फ़र्ज़ तो नहीं कर दी कि इधर आके तहज्जुद फ़र्ज़ हो जाती है। फ़र्क क्या है आपके अपने घरों में और इधर आने में भाग दौड़ का? यहाँ से सिर्फ हरम तक जाने में पौन थक जाते हैं, फिर आप तवाफ़ करते हैं तो उसमें चक्कर है, और तवाफ़ भी सच्ची बताऊँ तवाफ़ ही है अगर उसमें रूह नहीं है तो। तवाफ़ तवाफ़ है, हज में तो नमाजें भी माफ़ होती हैं। और आज एक और बड़ा प्यारा जुमला था उनका गाइड का, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था, मैंने बहुत इन्जॉय किया उनका। और उन्होंने जो जुमला बोला था वो जुमला बड़ा खूबसूरत था। आप देखिए सारी नमाजों में सबसे मुख्तसर टाइम किस नमाज का होता है? मगरिब का। 1 घंटा भी नहीं होता ना आमतौर पर। तो उन्होंने तो एक जुमला बोला था, लेकिन मैं उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ बढ़ा देती हूँ। आम तौर पे सबसे कम टाइम जिसका होता है वो मगरिब की नमाज़ है। अरफा के दिन मगरिब की नमाज़ फजर तक कज़ाई नहीं होती। उन्होंने इतनी बात बताई थी कि उस दिन तो मगरिब कज़ाई नहीं होती रात तक। यानी मर्जियाँ तोड़ो, अपनी बातें छोड़ो, अल्लाह ये चाहता है। हर चीज़ ही उलट, हज मुशक्क़त का नाम है। देखिए आपने फरमाया मेरी उम्मत में जिहाद जो है वो क्या है? हज है। यानी औरतों का जिहाद हज है। तो बाकी सच इसमें कोई झूठ भी नहीं है। तो बहरहाल पूरा कर लेते हैं इसको, दिल तो चाह रहा है और भी बात करें, लेकिन देखिए बस ईमान अंदर आएगा ना तो ये सारी चीज़ें फिर आसान होंगी। एक खजूर सारे दिन में, ज़रा बफे को जहन में लाइए और वहाँ जाके ये हदीस लिख दें। अगर मुझे इजाज़त दे दी जाए ना तो मैं इतनी कोटेशंस लिखवा दूँ इनके फूड कोर्ट्स में कि अल्लाह की बना, हर टेबल पर रखवाऊँ मैं। बेस्ट टाइम है दवा का, जितना खाना होता है होता भी ज़्यादा है और जो फेंकता है। मैं तो कहती हूँ पता नहीं इसमें क्या होगा। कल हम लोग बैठे तो हमारे साथ से टेबल से कोई उठकर गया ना, तो मेरी नज़र गई तो अल्लाह अकबर कितना खाना था उसमें पड़ा। मैंने इनसे कहा कि ये खाना फेंकेगा। किस्सा मुक्सी के हमने देखा, एक चीज़ मुझे दिखी कि मैं खा सकती हूँ, यकीन करें साफ पड़ी हुई थी अंदर प्लेट में, मैंने ली और खा ली। तो कहने का मतलब है कि ये एहसास बेदार करने की ज़रूरत है, जुम्मे के खुतबों में मेरी कोई आवाज़ कहीं भी पहुँचा दे, यानी हरम के इमाम साहब को अपने दरसों में जुम्मों में ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि जो लोग आए होते हैं वो मोस्टली इर्द गिर्द रह रहे होते हैं। पूछा था उनका, कह कह के थक गए, बोल बोल के थक गए, यानी मीन हम सभी ऐसे हो चुके हैं। आज प्लेटें भरते हैं और आधा खाया आधा छोड़ा, ये जो इतनी चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं होती कि सारी हमने ही खानी है, एक आज खा लें कल खा लें। तो बहरहाल बात का खुलासा क्या है कि यहाँ आकर ये कुछ सीखने की ज़रूरत है कि हमारे नबी के सहाबा ने कितनी मुश्किलों से ये दीन फैलाया। आज आप भी एक खजूर पे आ जाएं, यानी घर जाने की बात कर रही हूँ, आज भी अगर हम मुसलमानों के घरों में बस सुबह उठकर माँ एक खजूर और पानी या दूध का गिलास दे दे, और शाम को होगा ना, देखिए आज की माएँ कितना काम करती हैं। आज मसले भी तो खाने पीने के ना, नाराज़गियाँ क्यों हैं मर्दों से, गर्म रोटी, बच्चों ने माँ से क्या कहना, जाओ हमारी जान छूटे, रोटी खाना ये वो, एक खजूर। चलिए आगे देखें, गज़वे उहद में जब आरसी तौर पर मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो एक मुशरिक बड़े गज़बनाक अंदाज में चिल्ला रहा था, मुझे बताओ कि मुसलमानों का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। इस नाजुक वक्त में हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हो इन 10 जानिसार सहाबा में से एक थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाल रखा था और अपने सीनों पर दुश्मन के तीर खाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दिफा का फरीज़ा सर अंजाम दिया। जब जंग का ज़ोर ख़त्म हुआ तो सूरत हाल ये थी कि आपके दांत मुबारक शहीद हो चुके थे, आपकी पेशानी मुबारक ज़ख्मी हो चुकी थी और आपके रुखसार मुबारक में खौद, खौद वो लोहे की टोपी जो जंग में पहनी जाती है जिसके नीचे चेने होती हैं, खौद के दो हलके पैवस्त हो चुके थे। आपकी ये हालत देखकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु तेज़ी से आगे बढ़े ताकि आपके रुखसार मुबारक में धंसे हुए खौद के हलके निकाल दें। इतने में अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर अर्ज़ की, खुदारा इस खिदमत का मौका मुझे दें। चले आज ये भी देख लें इनका कारनामा। आपका शौक देखकर हज़रत सिद्दीक अकबर एक तरफ हो गए, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु को अंदेशा था कि अगर हाथ से इन हलकों को निकाला, तो आप देखिए कि हमारी आँख के ना ऐसे इर्द गिर्द ये खड्डी है, ये असल में अल्लाह ने ये जो पतला सा आँख का पानी है इसकी हिफाजत के लिए बनाई हुई है, चोट लगती है ना तो वो हड्डी उभरी हुई है आँख अंदर, वो बच जाती है। आपकी जो हौत लटकी थी ना उसकी चेन खुल के इसमें क्लिप हो गई हुई थी। अगर आप समझना चाहें ना तो ये कान की ये जो ऊपर की लो नहीं होती, इसमें कोई बाली चली जाए बगैर सुराख करवाए, अब वो चली तो गई ना, जैसे कभी हाथ पे कोई चोट लगे तो अंदर चली जाती है ना चीज़, निकालनी मुश्किल थी। तब वो बैदा ने देखा कि अगर इसको हाथ से निकाला तो तकलीफ़ होगी। आपने इस तरह किया कि अपना एक दांत मजबूती से एक हलके में पेवस कर दिया और पूरे ज़ोर से दांत दबाकर इसे रुखसार मुबारक से निकाल दिया। अगर ना समझ आए ना तो चेन जो भी आप गले में पहनते हैं ना उसको लीजिए, कभी उसका कुंडा बंद हो तो आप उसको दांत में डाल के ज़रा सा चीरते हैं तो वो खुलती है, यानी उन्होंने अल्लाह के नबी के लिए अपना दांत तोड़वा दिया। अल्लाह अकबर, इस जुस्तजू में आपका वो दांत टूट गया, फिर दूसरे हलके में दूसरा दांत पे बस कर दिया और इस तरह दूसरा हलका भी निकाल दिया, इसी की कोशिश में आपका दूसरा दांत भी टूट गया। मैं जब भी ये जुमले पढ़ती और पढ़ाती हूँ मैं सोचती हूँ, पहला समझ आता है कोशिश की, उनको नहीं पता था कि मेरा भी टूट जाएगा, दूसरा दांत तोड़वाना नहीं समझ आता। अपने ऊपर ले, कभी दांत निकलवाए और अगर डॉक्टर्स उसको सुन करके भी निकालें तो दिल अंदर से धड़क रहा होता है, एक टूटा पड़ा है और दूसरा निकाल रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगले दोनों दांत टूट जाने के बावजूद जनाब अबू उबैदा बिन जराह नहायत खूबसूरत दिखाई देते थे। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे बिलॉस कर दे। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम गज़वात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे, यहाँ तक कि आप अल्लाह को प्यारे हो गए, سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، کیونکہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کا امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہے. لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی سے بھلا کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو. اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت کی. تو آج آپ کو ایک نئی بات پتہ چل گئی، جس کو آپ کی زبان میں آج کہیں کہ کمپیٹیٹر کون تھے ابو بکر کے؟ ابو عبیدہ. وہ پہلے خلیفہ بن سکتے تھے، ابو عبیدہ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ کے مددگار و معاون اور اطاعت شعار رہے. دل میں سے بھی بات نہیں رکھی نا کہ مجھے ایسا، ہم ہوتے تو دل میں ڈالتے میری جگہ تھی کسی اور کو مل گئی. صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں آپ کی حکم عدولی نہیں کی. کیا آپ کو علم ہے کہ جناب ابو عبیدہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ ہے پتہ کسی کو؟ یعنی عمر فاروق کا دور تھا تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے ڈیپینڈنٹ تھے نا، تو انہوں نے حضرت عمر کا ایک حکم نہیں ماننا تھا. وہ کون سا تھا؟ آئیے سن لیں. واقعہ یہ کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوئے جا رہے تھے. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ چکی تھی. جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطۂ عروج پر تھا، عین اس موقع پر شام میں تعاون کی ایک ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے. حضرت عمر کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کیا. خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے. خط ملتے فوراً میری طرف چل پڑے. رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر دن کو ملے تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا. جب ابو عبیدہ نے فاروق اعظم کا خط پڑھا تو فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے. دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں. بات سمجھے؟ بیماری سے عمر ان کو بچانا چاہتے تھے کہ اتنا قیمتی بندہ وہاں نہ رہے. پھر امیر المومنین کو اس خط کا یہ جواب تحریر کیا، امیر المومنین بعد از تسلیمات عرض ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے. میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں. آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دے. مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت دے دیجئے. والسلام. جب یہ خط امیر المومنین عمر فاروق کے پاس پہنچا تو اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے. آپ کے اس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے آپ کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، کیا ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ لوگوں نے سمجھا، آئے جو نہیں تو کوئی ان کی موت کی خبر ہے. فرمایا، نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے. اس سلسلے میں فاروق اعظم کا اندازہ غلط نہ تھا. تھوڑے ہی عرصے میں جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تعاون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے. جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت کی، فرمایا، میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے. سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے. میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو. मौत से कोई बच नहीं सकता, सबको मेरी तरफ से सलाम, और तुम पर खुदाए जुल जलाल वल इकराम की रहमत हो। फिर मास बिन जबल की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, मास लोगों को नमाज पढ़ाया करें। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये कहा और आपकी पाकीज़ा रूह कफ से अंसरी से परवास कर गई, यानी जिस्म के बंद खोल के निकल गई। फिर इस मौके पर हज़रत मास बिन जबल उठे और इरशाद फरमाए, लोगों, आज तुम एक ऐसी शख्सियत के गम में मुब्तला हो, अल्लाह की कसम, मैंने इससे बढ़कर नेक दिल, हसद और बुगत से पाक सीना, आखरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और अवामुन्नास के साथ खैर ख्वाही से पेश आने वाला किसी और को ना पाया। सब मिलकर खलूस दिल से दुआ करो कि अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमत की बरखा बरसाए। खुदा रहमत कुंद ई आशिका ने पाक तैनत रो। मैं सोच रही थी कि ये खूबियों को हाईलाइट करें। आप सबने होमवर्क में इनकी शख्सियत की जितनी चीज़ें आ जाएंगी उसको भी करें, और जो कल पढ़ा था उनको भी कर लें, तो इस शॉर्ट कोर्स के एंड पे आपके मेरे पास एक लिस्ट तैयार होगी कि जिसकी रोशनी में हमने अपने किरदार में से क्या निकालना है और क्या डालना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। तो ये थे अबू उबैदा बिन जरा। कोई तो खूबी होती है ना, तभी अल्लाह ताला बंदे को चुनता है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो जी। ये सब अशरा मुबशरा में भी हैं, साबिकून अलव्वलून मिन अलमुहाजरीन वलंसार। हमने अटलांटा से जो कोर्स किया था इस्लाम ए टू जी, तो उसका टॉपिक जो था अशरा मुबशरा, उसमें भी इनके हालात ज़िंदगी आप मज़ीद सुन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सुभानकल्लाहुम्म वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।